श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। छठी पुस्तक में अभी हम ये जो चिलिका का अधिकार देख रहे हैं, उसमें सबसे प्रथम चिलिका जो है प्रकृति समुत्कीर्तन, प्रकृतियों के स्वरूप का कथन जो है, उसकी बात यहाँ हम देख रहे हैं। उसमें हमने ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म है, वेदनीय कर्म है, उसकी बात देखी थी कल। अब मोहनीय की कर्म, यहाँ मोहनीय कर्म की बात बताने जा रहे हैं। आठवां नंबर का सूत्र है पृष्ठ संख्या 11 पर। मोहनीयम यानी मोहनीय कर्म है जो मोहित किया जाता है, वह मोहनीय कर्म है। क्या कहा? मोहित कराता नहीं का, जो मोहित किया जाता है वह मोहनीय कर्म है। तो शंकाकार छोड़ने वाला नहीं है, वो पूछता है इस प्रकार की व्युत्पत्ति करने पर, शब्द का अगर हम ऐसा अर्थ करेंगे, व्युत्पत्ति यानी शब्द की निष्पत्ति, तो जीव के मोहनीय कर्मपना प्राप्त होता है, क्योंकि जीव मोहित कराया जाता है। जीव मोहित होता है ना, तो मोहित कराया जाता है वह मोहनीय कर्म। अगर ऐसा कहेंगे तो जीव को ही मोहनीय कर्म कहना पड़ेगा, तो उसका समाधान ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीव से अभिन्न और कर्म ऐसी संज्ञा वाले पुद्गल द्रव्य में, अभी जीव से अभिन्न है वो जो बंधी हुई है अपेक्षा से, उसको अभिन्न कहा। एक गुण और पर्याय की अपेक्षा अभिन्नता होती है, वैसा नहीं, तादात्म्यपना, उस रूप अभिन्नता नहीं लिया, एक क्षेत्रावगाह संबंध भी है ना वहां पर। तो जीव से अभिन्न और कर्म ऐसी संज्ञा वाले पुद्गल द्रव्य में उपचार से कर्तृत्व का आरोपण करके उस प्रकार की व्युत्पत्ति की गई है। एक कर्म वाला जीव ऐसा ले लेना यहाँ, अथवा अभी दूसरी पद्धति से बोलते हैं, जो मोहित करता है वह मोहनीय कर्म है, यह हमें सही लगता है। शंका, अब उस पर भी इसके ऑब्जेक्शन है, जो मोहित करता है उसको अगर हम मोहनीय कर्म कहेंगे तो कहता है शराब भी मोहित कराती है, अभी आजकल तो कितने ड्रग्स निकले हैं। तो ऐसी उत्पत्ति करने पर धतूरा, धतूरा ये जो प्लांट है, वनस्पति है, वो धतूरा का बी होता है, वो भी खाने से ऐसे वो भ्रम हो जाता है। मदिरा और भार्या को भी ले लिया उसने। आदि के भी मोहनीयता प्रसक्त होती है ना, प्राप्त होती है, उनको भी मोहनीयपना बनेगा, उसका समझ नहीं, क्योंकि यहाँ पर मोहनीय नामक द्रव्य कर्म का अधिकार है। अपना अपनी बात किस संबंधी, कर्म संबंधी चल रही है, उसमें भी मोहनीय कर्म की चल रही है। अतएव यानी इसलिए कर्म के अधिकार में धतुरा, मदिरा और स्त्री आदि को मोहनीय कर्म मानना संभव नहीं है। इस शंका, कर्म क्या वस्तु है? तो कहते कर्म पुद्गल द्रव्य है, वो कर्मम हुआ है, कर्म पुद्गल द्रव्य है। हाँ, वस्तु है ना द्रव्य, क्या वस्तु है, क्या चीज है वो, द्रव्य गुण पर्याय, वो तो पुद्गल द्रव्य की वो पर्याय है, पुद्गल द्रव्य। यदि ऐसा है तो सभी पुद्गलों के कर्मपना प्रसक्त होता है, प्राप्त होता है, कर्म पुद्गल द्रव्य कहा, सभी पुद्गल द्रव्य कर्म ऐसा नहीं कहा, परंतु शंकाकार है तो क्या कहते हैं, कर्म पुद्गल द्रव्य ऐसा कहने पर सभी पुद्गल कर्म हो जाएंगे, तो नहीं, क्योंकि अभी उसमें भी कर्म किसको कहना, कौन सी विशिष्ट पुद्गल द्रव्य को कर्म कहना है, उसकी बात यहां बता रहे। मिथ्यात्व आदि बंध कारणों के द्वारा, बंध के कारण हमने कल ही देखे थे, याद है कौन? हाँ, मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, ये बंध के कारण हैं। तो ये बंध कारणों के द्वारा जीव में संबंध को प्राप्त, जीव के साथ जो संबंध को प्राप्त हुआ है, उसका जीव के साथ वो एक क्षेत्रावगाह संबंध भी बना रहता है, कोई संश्लिष्ट संबंध होता है। तथा और क्या है इसका स्वरूप, जन्म, जरा और मरण, जरा यानी बुढ़ापा, जन्म, बुढ़ापा, मरण आदि कार्यों में, कार्यों के करने में समर्थ पुद्गलों के कर्मपना माना गया है। अभी आदि में हम वो सब ज्ञान की हीनता, दर्शन की हीनता, ये जो राग द्वेष वगैरह, श्रद्धा की विपरीतता, ये आदि में सब आठों ही कर्मों का जो फल है उसको ले लेना। तो जन्म, जरा, मरण आदि कार्यों के करने में समर्थ ये पुद्गल कैसा है, जो कर्म रूप से बंधा हुआ है, और जन्म, जरा, मृत्यु आदि जो जीव के बनते हैं उसमें इसका हेतु है, कारण बनता है, निमित्त बनता है। ऐसे जो सामर्थ्य है जिन पुद्गलों में, उन पुद्गलों के कर्मों पर नाम माना गया है, ऐसे ही पुद्गलों को कर्म कहते, किसी भी पुद्गल को कर्म नहीं कहते। ये यहाँ पेन पड़ा, ये मेरा कर्म नहीं कहलाएगा, है ना, कहा भी है। अब उसको ऊपर गाथा में पढ़ते हम, तीन नंबर की गाथा। जीव परिणाम हेतु कम्मत्तम पोगला परिणमंती नयनान परिणदो पुनः जीवो कम्मम समाधियदि। नीचे उसका अर्थ क्या है, जीव के रागादि परिणामों के निमित्त से, जीव परिणाम हेतु कहा ना, हेतु यानी निमित्त, पुद्गल कर्म रूप परिणत होते हैं। कम्मत्तम पोगला परिणमंती ऊपर गाथा में आया है, किंतु ज्ञान परिणत जीव, ये ज्ञान के बाद कॉमा नहीं चाहिए, एक शब्द है वो ऊपर लिखा ना, नाण परिणदो पुण, परंतु ज्ञान परिणत जीव कर्म को नहीं प्राप्त होता है। जिसने रागादि से अपनी भिन्नता पहचान ली है, ज्ञान परिणत यानी ज्ञान चेतना वाला हम कह सकते हैं उसको, अपने स्वभाव की जिसको प्राप्ति हो गई है, उस रूप जो परिणमित हो गया है, शुद्धात्मा का अनुभव जिसके है, वो कर्म को नहीं प्राप्त होता, यानी कर्म को नहीं बांधता, यानी ज्ञानी होने पर वो कर्म का बंध नहीं करता। अब यहां भी दो अपेक्षाएं लग सकती है, अब हम समय सार में देखते कि जो अज्ञान अवस्था में जो कर्म का बंध था, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी आदि, वो चौथे गुणस्थान वाले को भी वो बंधे रुक जाता है, तभी थोड़ा बंध है उसको नहीं ऐसा गिनकर अल्प है इसलिए नहीं होता ऐसा भी कहने में आता है, या पूर्ण रूप से ज्ञानी होने पर उसका बंध होता ही नहीं है, उस अपेक्षा से भी उसको कह सकते हैं ज्ञान परिणत, पूर्ण रूप से ज्ञान परिणत लेना। अब चौथी गाथा, जारिसो परिणामो तारिसो चेव कम्म बंधोवि वत्थु सुविषम सम सन्निदेशु अज्जपजो एण। विषम और सम संज्ञा वाली, जिसको हम विषम या सम कहेंगे, दूसरी भाषा में जिसको इष्ट या अनिष्ट, या विषम के लिए अनिष्ट और सम के लिए इष्ट कहेंगे, तो अनिष्ट और इष्ट वस्तुओं में ये जीव ने ही मान लिया ना, इष्टता अनिष्टता, वस्तुएं इष्ट अनिष्ट नहीं है, परंतु यहाँ कथन में तो शॉर्ट में कथन आता है, तो इष्ट और अनिष्ट वस्तुओं में आत्म संबंधी अध्यात्म योग से, यानी उसमें जो जीव की जो अपनत्व जो है, पर पदार्थों में जो उसका ममत्व भाव है, यह मेरे है, ऐसे उसका जो आत्मा का जिससे अनुभव नहीं है, वो पर पदार्थों में जो भ्रांति करता है, उसके कारण मिथ्यात्व आदि के निमित्त से जिस प्रकार का परिणाम होता है, उसमें भी अभी मिथ्यात्व आदि में मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग सब ले लेना, उसके निमित्त से जिस प्रकार का परिणाम होता है, कर्मबंध उसी प्रकार का होता है। यानी जैसे जैसे अभी समझो मिथ्यात्व रुक गया, अभी असंयम है, कषाय है, योग है, तो उसके कारण वैसा वैसा बंध होगा। तो जैसा वहां निमित्त है वैसा वहां कर्मबंध भी होगा। मिथ्यात्व आदि बंध कारणों के द्वारा, ये बंध के कारण है, बिना बंध के कारण किसी जीव को कर्मबंध होने लगे ऐसा नहीं होता। बंध के कारण है वहां, वो निमित्त पने वहां है और पुद्गल स्वयं कर्मरूप परिणमित होता है। वैसे पुराने कर्म का उदय है वहां पर और यहाँ जीव स्वयं मिथ्यात्व रागादि रूप परिणमित होता है, वहां उस कर्म के उदय को हम निमित्त कहेंगे। उसको द्रव्य प्रत्यय भी कहा है, आश्रय उसको कहा है, कर्मों के उदय के, पुराने कर्मों के उदय को। अब क्या कहते हैं, मिथ्यात्व आदि बंध कारणों के द्वारा, यह तो निमित्त का कथन है ना सब, मिथ्यात्व कर्म में कुछ नहीं करता, फिर भी ये जो कर्णानियोग के शास्त्र है इसमें तो निमित्त का कथन किया जाता है, निमित्त का ज्ञान कराया जाता है। तो निमित्त होता है वहां वैसा, परिणमन तो स्वयं पुद्गल कर रहा है, परंतु वहां सामने कब होता है, तो जीव में ऐसी ऐसी अवस्था होती है तब तो वहां ऐसा ऐसा कर्मबंध होता है। तो उसके द्वारा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कार्य करने की शक्ति से परिणत हुए पुद्गल, ये पुद्गल में ऐसी सामर्थ्य है कि क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कार्य रूप से परिणत हो, उसको निश्चय से पुद्गल का कहा है ना समय सार में, क्रोध निश्चय से पुद्गल का है। जैसे हम शक्कर डालते हैं तो चाय मीठी हो जाती है, तो मीठापन वो शक्कर का गुण है, वैसे यहाँ क्रोध कर्म के उदय में यहाँ जीव के क्रोधादि परिणाम होते हैं, क्रोध परिणाम, तो कहते वो निश्चय से पुद्गल का है, उसमें ऐसी सामर्थ्य है पुद्गलों में, कर्मों में। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने वाले सब कथन है। जैसे हम कहते ना पुद्गल में अलग अलग रस का सामर्थ्य है कि नहीं, जैसे मिर्ची है तीखी है, उन पुद्गलों में वो तीखापना है और जिसमें डाले उसको भी तीखापन। अभी हम हाथ में थोड़ी देर लेते हैं मिर्ची या टुकड़े करते हैं तो उंगलियां भी ऐसी हो जाती है कि जलन हो जाती है या वो तीखी हो जाती है, बाय चांस आँख में लगे तो बिल्कुल जलना शुरू हो जाता है, या उसको चक्के देखे तो वो भी तीखे हो जाते हैं। तो ये पुद्गलों की ऐसी शक्ति है, सामर्थ्य है। तो यहाँ हमने तो अभी तक स्पर्श रस गंध वर्ण इतना ही देखा था उसके गुण, परंतु यहाँ क्रोध रूप परिणाम आवे या जीव में वो निमित्तपना बने, ऐसी सामर्थ्य उन पुद्गलों की है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कार्य करने की शक्ति से परिणत हुए पुद्गल जीव के साथ संबंध को प्राप्त होकर मोहनीय संज्ञा वाले हो जाते हैं। उसका ही हमने एक नाम रख दिया मोहनीय। उसमें बहुत भेद है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, हास्य, रति, अरति, ये सबका मिलकर एक नाम है मोहनीय। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब अगला कर्म बताने जा रहे हैं आवम। आयु कर्म है जो भवधारण के प्रति जाता है, वह आयु कर्म है। ये भवधारण करना ये उसका कार्य, उसका फल है। जो पुद्गल मिथ्यात्व आदि बंध कारणों के द्वारा, हर एक में लिया इसको, हर कर्म की परिभाषा में मिथ्यात्व आदि बंध कारण के द्वारा कहा, निमित्त बताया, फिर उसका फल देने की शक्ति क्या है उसको भी बताएंगे, तभी तो उसके नाम अलग अलग पड़े। आठों कर्मों के अलग अलग नाम पड़ने का कारण क्या है, उसको प्रकृति क्यों कहा, ये उसका स्वभाव है। अलग अलग स्वभाव वाले ये पुद्गल है कि जीव में वो अलग अलग फल देते हैं, निमित्तपना बनता है। तो आयु कर्म किसको कहना, तो उसमें भी बंध के कारण तो मिथ्यात्व आदि है। ठीक, नरक आदि भव धारण करने की शक्ति से परिणत होकर, अभी जैसे नरकायु बांधी हो तो नरक भव धारण करने की शक्ति उन पुद्गलों में है। जीव स्वयं अपनी योग्यता से वहां गमन करता है, वैसे भाव करता है नरक गति के योग्य, फिर भी उसमें वहां पुद्गलों का निमित्तपना बनता है। जब जीव ऐसे भाव करता है तो सामने वैसे पुद्गल वहां मौजूद है। जीव पराधीन नहीं है, ना ही कर्म पराधीन है, फिर भी कैसे कैसे परिस्थितियों में कैसे कैसी बातें बनती है उसका ज्ञान कराते। देखो ये इंग्लिश में अच्छा शब्द है निमित्त के लिए, इंस्ट्रूमेंटल, यानी वो कुछ नहीं करता, इंस्ट्रूमेंटल है। देखो जो पुद्गल मिथ्यात्व आदि बंध कारणों के द्वारा नरक आदि भव धारण करने की शक्ति से परिणत होकर जीव में निविष्ट होते हैं, निविष्ट होते हैं जो रहते हैं, प्रविष्ट होते हैं जीव के ही प्रदेशों में, एक क्षेत्रावगाह रूप से रहते हैं, संबंध होता है उनका, वे आयु इस संज्ञा वाले होते हैं। हमने देखा था, रहते हैं कुछ काल के लिए, जब उनका उदय आता है तब उस रूप उसका फल मिलने लगता है। उनमें वो शक्ति पड़ी है, जब वो जीव के प्रदेशों में रहते हैं तब वैसी वैसी शक्ति उनमें पड़ी है, क्योंकि हमने देखा था ज्ञान आवरण दर्शन आवरण आदि आठों ही कर्म बांधता है जो, तो वो तो बंधे हुए पड़ते हैं वहां, पड़े रहते हैं, और जिनकी जिनकी स्थिति यानी वो काल पूरा हुआ उनका उनका वो उसका फल मिलेगा, उदय के काल में उसका वैसा फल मिलता है। शंका, उस आयु कर्म का अस्तित्व कैसे जाना जाता है, पहले भी पूछा था ना वो वेदिनी का अस्तित्व कैसे आपने माना, तो अब यहां पूछ रहे आयु कर्म का अस्तित्व है ये हमने कैसे जाना। तो कहते देह की स्थिति अन्यथा हो नहीं सकती, देह की स्थिति यानी देह का टिकना, बना रहना, जीव और देह का जो संयोग बना रहता है, देह की स्थिति यानी देह का रहना, अभी जन्म से लेकर जैसे जन्म ने वो इस यानी इस मनुष्य पर्याय में आया है तब से लेकर उसके अंत समय तक, तो ये जो देह की स्थिति है वो अन्यथा नहीं हो सकती, यानी उसके बिना नहीं हो सकती। इस अन्यथा अनुपपत्ति से आयु कर्म का अस्तित्व जाना जाता है। हम देखते हैं कि बहुत बीमार कोई व्यक्ति है, बूढ़ा है, और चाहता है कि अभी इससे छुटकारा मिले तो अच्छा है। किसी को पैरालिसिस है, किसी को अन्य अन्य बीमारी होती है, और मेरा तो अभी सब कुछ कार्य हो गया इस भव का, अभी मेरे करने के लिए, अभी मैं मरूं तो अच्छा है, दूसरों के ऊपर बोझ क्यों बनूं। परंतु अभी उसके क्या है, आयु बाकी है, चाहकर भी मरता नहीं है। ऐसा है जिसने आगामी भव की आयु बांध ली है, मान लेते कोई 81 वर्ष का जीव है और वो पहले में पहले कब आयु बांधता है, 54 साल यानी 27 साल बचे, एक अंतर्मुहूर्त तक उसने आगामी भव की आयु बांधी। अभी उसकी जो 27 साल है उसकी क्या कहलाई, आबाधा काल। अब जिसने 54वें वर्ष में आयु बांध ली है तो उसको अभी ये 81 साल तक मरण होगा ही नहीं, क्योंकि आगामी भव की जो ये 27 साल उसकी आबाधा काल है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, यानी जो कदली घात से मरण होता है वो उसमें नहीं होगा। अभी हम देखते नहीं सब कुछ कुछ करते तो अभी मरते ही नहीं है वो। उसने जिसने आयु बांधी ही नहीं है उसी का कदली घात होता है। अब समझो किसी का भी 81 वर्ष वाला है तो उसको भी 54 साल के पहले 50 साल में तो उसका कदली घात होकर मरण हो सकता है। वैसे वो आयु बांधने के अलग अलग नियम है, कभी ऐसा होता है कि वो 54वें साल में उसने आयु नहीं बांधी है, ऐसे 8 अवसर आते हैं त्रिभाग त्रिभाग वाले, तो 27 साल बाकी थे तभी एक अवसर आया, फिर 27 का 1/3 9 साल बाकी रहे, यानी 81 में से 9 कम कर दो तो उतने जब है तब उसका दूसरा आयु बंधने का अवसर आएगा। यदि आयु बंधी न हो तो क्या होता है, कदलीघात कैसे होता है, पहले आयु बांध लेता है, ये कदलीघात करने के समय आया तो आयु बांध लेता है उतनी अंतर्मूर्त वाली आबाधा वाली, उसमें आबाधा कम पड़ेगी। हाँ, और उसका मरण होगा वहाँ। हाँ, ये पहला भी हो सकता है। अभी हम देखते हैं ना, यंग एज में भी कोई मरते हैं तो हो सकता है। हाँ, तो आठ जो चांसेस होते हैं, तो जिसने आयु ही नहीं बांधी उन चांसों में, ऐसा हो सकता है कि अंत में वो जाके बांधता है। वो भी हमने देखा था, आठवीं बार जो नहीं बांधता है, मरण के एक अंतर्मुहूर्त पहले आयु बांध लेता है। तो उतने छोटे काल में आयु का बांधना, उसका आबादा का वो बीत जाना, उसका मरण होना, ये सब उतने में हो जाता है। देखिए, कोई जवान एकदम एक्सपेक्टेड नहीं, हमारी दृष्टि से एक्सपेक्टेड नहीं है। अभी वैसे आयु बांधी की जो कतली घात से मरने वाला था, क्योंकि हम देखते चरम शरीर है, तो उसका कतली घात नहीं हो सकता है। असंख्यात वर्षों की आयु वाले है, देव नारकी है, भोगभूमि वाले, उनका कतली घात नहीं हो सकता। मनुष्यों में, तिरियंचों में भी सबका नहीं होगा। अभी जैसे उसके ऐसे परिणामों से आयु बांधी है उसने, तो ऐसे ही वो कदली घात से मर सकते हैं। तो वहां आयु के परमाणु तो अंदर पड़े हैं, परंतु वो सब उदय आकर खिर जाते हैं। अभी वो मनुष्य कोई है तो मनुष्य आयु के निषेक खिर गए उसके, अब तब तक तो अगली आयु बांध लेता है, तो उस आयु का उदय चालू हो जाएगा, अन्य भव में चला जाएगा वो। आयु बांधती है वो चेंज नहीं होती।
आपका जो कहना है कि एक बार आयु बांधी जाए तो चेंज नहीं होता है, ऐसा ही है। देखो, श्रेणिक ने आयु बांधी थी, उसमें कम हो गया, पर वो आयु मतलब नरक का देव नहीं बना।
देखो, ये बात हम देखते तो डर निकल जाता है। अभी अभी एक समय में मरण है, तो वहां दूसरा उसका भव चालू हो गया। सुरेश भैया अपने, उनके लड़के की लड़की, अभी मेरे मुना की लड़के के साथ वाली है, 7 साल की है। अभी उनका देहांत हुआ, वो साल लोग आ गए औरंगाबाद से यहाँ पर, तो देखकर उसने पूछा कि क्या बाबा कहते हैं ना वो, तो बाबा दूसरे भव में चले गए। वो सुनती है पाठशाला वगैरह, वो उसकी मम्मी को भी बहुत, यानी हम वहाँ गए थे औरंगाबाद में, उनके शिविर वगैरह लेते थे तब से। इतनी छोटी है स्कूल, वो अभी तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, यानी आलू प्याज वगैरह कुछ नहीं खाती वहाँ, यानी स्कूल वालों के साथ झगड़ा भी हो गया, मगर मैं नहीं खाऊंगी इतनी।
स्कूल से खाना दिया जाता है
स्कूल में उनके? हाँ,
यानी सारा दो टाइम का खाना ये सब वो स्कूल वाले देते हैं, तो ये सब्जी लेगी नहीं और जबरदस्ती करेंगे तो खाएगी नहीं।
यानी यहाँ तक नौबत आएगी तो स्कूल से निकाल कर दूसरे स्कूल में डालना पड़े। फिर आखिर में वो स्कूल वाले भी कुछ मान गए इसको, यानी घर से ले जाने के लिए परमिशन मिल गई। वो पूछती अभी यहाँ इतनी छोटी, क्यों ये अभी दूसरे भव में जन्म ले लिया उन्होंने। देखो, ये शास्त्र स्वाध्याय भी करते हैं या बच्चे भी सुनते, भी इतनी छोटी लड़की कहाँ क्या क्या पढ़ने गई होगी, वहाँ भी उनके पाठशाला वगैरह कुछ चलती है, तो ये बच्चे भी जान लेते हैं उसमें। नहीं तो हम तो हाय हाय है, वो तो नाश ही हो गया, पूर्ण रूप से विनाश हो गया करके रोना धोना चलता है।
वो रोना धोना तो नाश हुआ, इसके लिए अपना कन्वीनियंस चला गया, इसके लिए रोते
वो तो ना, संयोग में चीजें, वैसे दुख नहीं होता है वो बात नहीं है, फिर भी उसके पीछे का ये जो तत्व मालूम हो तो कितना समाधान है कि नहीं, वो जीव अभी यहाँ नहीं है, अन्यत्र है। उसकी अस्थि भी मालूम पड़ती है कि नहीं नहीं अपने यहाँ नहीं है, कहीं ना कहीं उसको विद्यमान है। तो ये तो आयु कर्म की जो बात हुई थी, जब तक आयु का उदय चल रहा है, विशिष्ट आयु का, तब तक उस देह की स्थिति बनेगी। अब ऐसा कौन सा डॉक्टर है कि जो आयु कर्म में कुछ बढ़ोतरी करके देगा, क्योंकि वो कर्म तो पहले भव में उसकी स्थिति बनती है, अब उसमें एक समय का भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। हो सकता है जिसका कदली घात उसमें कैसा परिवर्तन हुआ, तो उसको ऐसी बांधी थी कि विशिष्ट एज में वो सारा, ऐसा भी होता है करोड़ पूर्व की आयु बांध के आया है जी, और फिर जन्म के बाद अंतर्मुहूर्त में ही वो सारा कदली घात होकर वो मर जाए, एक अंतर्मुहूर्त। ऐसे ही, हाँ ऐसे उसके परिणाम थे कि वो विशिष्ट समय में ऐसे मरने वाला था। क्रमबद्ध की अपेक्षा उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अरे रे ये निमित्त आया या ऐसा एक्सीडेंट हुआ इसलिए मर गया। हम तो सोचते उसमें तो हम ऐसे तिलमिला जाते ना, अरे रे ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, डॉक्टर मिल जाता तो हो जाता, ये डॉक्टर ने वो डॉक्टर चाहिए था, ये हॉस्पिटल ने वो हॉस्पिटल चाहिए था, अभी क्यों निकला वो, इसलिए वो मर गया, ऐसी बातें बहुत हम सोचते ना आजकल, एक्सीडेंट वाली बातें तो होती रहती है। परंतु वो तो जिनेंद्र भगवान ने तो उसको ऐसे ही होते हुए जाना है। अब आगे हम नाम कर्म की बात करेंगे। नामम यानी नाम कर्म है जो नाना प्रकार की रचना निष्पन्न करता है, निष्पन्न करता है ना उत्पन्न करता है, वह नाम कर्म है। यानी शरीर आदि की जो रचना करे उसमें क्या, देखो शरीर संस्थान, ये नाम कर्म के कुछ भेद बता रहे। शरीर संस्थान, संस्थान यानी आकार, सहनन यानी जो हड्डी की जो मजबूती आदि होती है, वर्ण गंध आदि कार्यों के करने वाले जो पुद्गल जीव में निविष्ट है। अब ये सारे कार्य ये किसकी, उसमें निमित्त कौन है, वो कर्म है। यानी हमने कुछ नहीं किया इस शरीर में, हमारे मोह राग द्वेष के कारण जो पहले हमने नाम कर्म बांधे थे, अभी उसका उदय चल रहा है, तो ये कर्म के कारण इस सब की रचना हो गई है। कर्म भी हमारा नहीं है तो ये मेहमान का मेहमान है, हमारा कुछ नहीं लगता, फिर भी ये शरीर ही मैं हूँ, ऐसी अनादि सी ही जिस जिस पर्याय में जीव जाता है वहाँ वहाँ ऐसी बिना सिखाए मान्यता हो जाती है, उसके लिए उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर मैं नहीं हूँ ये तो हमको रोज सीखना पड़ता है। जो हम है नहीं है। तो जो नाना प्रकार की रचना निविष्ट है वे नाम संज्ञा वाले होते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका, उस नाम कर्म का अस्तित्व कैसे जाना जाता है, उसका समाधान। शरीर संस्थान वर्ण, वो वर्ण हुआ उसका वर्ण करो, वर्ण आदि कार्यों के भेद अन्यथा हो नहीं सकते। इस अन्यथा अनुपपत्ति से नाम कर्म का अस्तित्व जाना जाता है। गोदम यानी गोत्र कर्म है जो उच्च और नीच कुल को ले जाता है, वह गोत्र कर्म है। मिथ्यात्व आदि बंध कारणों के द्वारा हर डेफिनेशन में इसको ले लिया है। जीव के साथ संबंध को प्राप्त एवं, अभी उसका फल बताएंगे, उच्च और नीच कुलों में उत्पन्न कराने वाला पुद्गल स्कंध गोत्र इस नाम से कहा जाता है, उसका उस पुद्गल स्कंध का नाम है गोत्र कर्म। अब अंतरायम चेदी, अंतराय कर्म है, चेदी से यहाँ समाप्त तो होता है, हम इति शब्द आता है ना, इति यानी अंत में डालते हैं और शुरू में क्या डालते हैं, अथ, अथ यानी वो जैसेनाचार्य की टीका में हमेशा आते अथ यानी अब इस गाथा का विषय ऐसा ऐसा है, और सब जा होने के बाद इति, जो दो पदार्थों के अंतर अर्थात मध्य में आता है वह अंतराय कर्म है। बीच में आता है ना वो अर्थात क्या, कौन सी रेस कहते हो, ऑब्स्टेकल, हाँ अंतराय कर्म है। दान लाभ भोग और उपभोग आदि को में विघ्न करने में समर्थ तथा अपने कारणों के द्वारा जीव के साथ संबंध को प्राप्त हुआ पुद्गल स्कंध, अपने कारणों के द्वारा ने वो मिथ्यात्व आदि कारण जो है, उन कारणों के द्वारा जो जीव के साथ संबंध को प्राप्त हुआ है। अब इसमें कैसी वाली शक्ति है कि दान लाभ भोग उपभोग आदि में विघ्न लाना, ऐसी उसकी उस पुद्गल स्कंध की योग्यता है। वह अंतरा इस नाम से कहा जाता है। मूल प्रकृतियां इतनी अर्थात आठ ही होती है, इस बात के ज्ञान कराने के लिए सूत्र में इति यह शब्द प्रयुक्त किया गया है, यानी यूज प्रयुक्त है ने, ये इति शब्द क्यों डाला है, इति शब्द का वापर यहाँ क्यों किया है, तो अभी इतने ही कर्म है आठ, ये बताने के लिए। इस विषय में यह उपयुक्त श्लोक है। हेतावेवं प्रकारादौ व्यवच्छेदे विपर्यये प्रादुर्भावे समाप्तौ च इति शब्दं विदुर्बुधा। ये संस्कृत व्याकरण संबंधी ऐसे कोई कोई होते, इति शब्द का अर्थ क्या है, या विशिष्ट शब्दों का अर्थ क्या है, या एकार्थवाची जो अलग अलग शब्द होते हैं ना, उसको इकट्ठा करके ऐसे ऐसे सूत्र बनाए जाते हैं। संस्कृत में ऐसे बहुत सारे हैं। देखो यहाँ कहते हैं हेतु एवं प्रकार आदि, व्यवच्छेद विपर्य प्रादुर्भाव और समाप्ति के अर्थ में इति शब्द को विद्वानों ने कहा है। इति शब्द कहाँ कहाँ किस किस अर्थ में आता है, तो ये अलग अलग अर्थों में इति शब्द है। तो समाप्ति के अर्थ में यहाँ इति शब्द आया है। अन्यत्र कहाँ कहाँ आता है, हेतु के अर्थ में एवं यानी इस प्रकार, प्रकार लिखा ना, प्रकार आदि, व्यवच्छेद, व्यवच्छेद यानी उसमें भेद करना, विपर्य यानी उससे उल्टा विरोधी, प्रादुर्भाव यानी आविर्भावना यानी प्रकट होना, और समाप्ति के अर्थ में अलग अलग जगह अलग अलग, अभी जैसा जो वाक्य होगा वहाँ उसके ये अलग अलग अर्थ हैं। हम स्कूल में थे ना, तभी ऐसे ही अलग अलग सूत्र हमको, वो अमर कोश नाम का एक कोश है, समानार्थी की भी उसमें ऐसे अलग अलग शब्द आते हैं। तो हम अभी तो स्टूडेंट की ऐसी टे होती है ना आदत, कोई भी मस्करी करते हैं तो इंग्लिश शब्द भी डाल के ऐसे सूत्र हम बनाते थे। जैसे खिड़की के लिए वातायन शब्द आता है, हम कहते हैं विंडो वातायन खिड़की गवाक्ष भोक भिंतिला। दीवार में जो होल है बीच में, ऐसे करके हम अलग अलग शब्दों के द्वारा ऐसे कुछ सूत्र बनाए थे। तभी इस, ये तो अपने विषय से कुछ नहीं है, इति शब्द व्याकरण की दृष्टि से उसका क्या अर्थ है इतना बताया। इसलिए मूल प्रकृतियां आठ ही है। शंका, यह कैसे जाना जाता है कि मूल प्रकृतियां आठ ही है, उसका समाधान, आठ कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाले कार्यों से पृथकभूत कार्य पाया नहीं जाता। अभी हमने जो आठ कर्मों के जो अलग अलग कार्य देखे, इनके अलावा अन्य कोई भी कार्य देखने में नहीं आता। इससे जाना जाता है कि मूल प्रकृतियां आठ ही है। ये कर्मों के फल रूप जो कार्य हमने देखे थे, इनको छोड़कर अन्य कार्य किसी कर्म के कारण नहीं होता हुआ देखने में आता। अनंतानंत परमाणुओं के समुदाय के समागम से उत्पन्न हुई इन आठ प्रकृतियों के द्वारा, देखो क्या है, ये आठ प्रकृतियां जिसको हम कर्म कहते हैं, वो कितने, दो चार पांच दस परमाणु हो गए, तो अनंतानंत परमाणुओं के समूह से उत्पन्न हुई है। एक एक प्रकृति में अनंतानंत कर्म प्रकृति, ये कर्म परमाणु है, तो अनंतानंत परमाणुओं के समुदाय का समागम, समागम यानी उनका समूह, उनका इकट्ठा आना, उसके कारण जो उत्पन्न हुई इन आठ प्रकृतियों के द्वारा एक एक जीव प्रदेश पर संबद्ध, संबद्ध यानी उसके साथ बंधे हुए, यानी एक एक जीव के जो असंख्यात प्रदेश है अपने अपने, उन पर बंधे हुए अनंत परमाणुओं के द्वारा अनादि स्वरूप से संबंध को प्राप्त, या अनादि से ही जीव के साथ संबंध को प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं था कि जीव प्रदेश बिल्कुल शुद्ध थे और बाद में कर्म आकर चिपके हुए, तो अनादि से बंधी हुई अवस्था में पाया जाता है। जैसे सोना है वो खदान में सुवर्ण पाषाण के रूप में प्राप्त होता है, जैसे झवेरी के दुकान में मिलता है ऐसे प्योर सोना तो वो खदान में नहीं मिलता, तो वहाँ किसने मिलाया होगा उसको, वो ऐसे ही नेचुरली उसी अवस्था में पाया जाता है। वैसे जीव और कर्म भी अनादि से ही वो बंधे हुए अवस्था में पाए जाते हैं। तो अनादि स्वरूप से संबंध को प्राप्त ऐसा अमूर्त भी यह जीव, क्या कहते हैं, जीव अमूर्त है और ये अनादि से कर्मों के साथ संबंध को प्राप्त हुआ है, ऐसा अमूर्त होने पर भी जीव मूर्तत्व को प्राप्त होता हुआ। हमने समय ज्ञान चंद्रिका में जीव के भेद देखे थे, रूपी अरूपी, मूर्त अमूर्त जीव को कहा था, जीव के दो भेद कहे थे। कैसे? कर्म के साथ बंधा हुआ वो जीव कथनचित किसी अपेक्षा से मूर्त कहलाता है, अमूर्त होने पर भी, क्योंकि अनादि से वो उसके रहित कभी हुआ ही नहीं है, इसलिए वो मूर्त, क्योंकि अनंत अनंत परमाणु उसके साथ बंधे हुए हैं। कर्म मूर्त है, उनकी अपेक्षा से जीव को भी मूर्त कहेंगे। तो अमूर्त होता हुआ भी यह जीव मूर्तत्व को प्राप्त हुआ है, ऐसे प्राप्त होता हुआ, ये बड़ा वाक्य ना, क्या करता है वो प्राप्त होता हुआ, अभी पहले दृष्टांत देके समझाएंगे। आविद्ध कुलाल के चक्र के समान, आविद्ध कुलाल चक्र, कुलाल चक्र है ने कुंभकार का चक्र, आविद्ध है ने वो जो घूम रहा है, घुमाया गया है कुम्हार का चक्र, उसके समान अर्थात उसी का अर्थ करते हैं, प्रयोग प्रेरित कुंभकार के चक्र के तुल्य, प्रयोग प्रेरित यानी किसी जीव किसी अन्य ने, आदमी ने उसको प्रेरित किया यानी वो निमित्त रूप से, तो जिसने उसको घुमाया है, ऐसे कुंभकार के चक्र के तुल्य यानी कुंभार के चाक के समान। हमने देखा है कुंभकार क्या करता है, चाक को घुमाता है, फिर लकड़ी लेके बहुत जोर जोर से घुमाता है, और फिर लकड़ी भी नीचे रख देता है और हाथ भी उठा लेता है, और फिर वो जैसा मिट्टी का गोला करेगा उस पर रखेगा, उसको शेप देगा, तब तक वो कुमार का चक्र अभी पहले ही उसको प्रेरित किया, वो तो घूमता ही रहता है। वैसे उसके समान क्या करता है ये जीव, अभी पहले हमने वाक्य पढ़ा था, अमूर्त होता हुआ भी जो मूर्तत्व को प्राप्त हुआ है, ऐसा यह जीव द्रव्य परिवर्तन आदि सात प्रकार के संसारों में संसरण या भ्रमण करता है। हमने पंच परावर्तन देखे है, परंतु उसमें हमने कल देखा था द्रव्य परावर्तन में, कर्म द्रव्य परावर्तन और नो कर्म द्रव्य परावर्तन देखे, और क्षेत्र परावर्तन में स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन देखे। तो ये सात प्रकार के संसारों में परिभ्रमण करता हुआ या करता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। कर्म की छोटे शॉर्ट में बात बताएं कि अनंतानंत परमाणुओं के समुदायों से ये कर्म उत्पन्न हुए हैं, और एक एक जीव के प्रदेशों में ये अनंतानंत कर्म परमाणु स्थित है, उसके कारण अमूर्त ऐसा जीव भी मूर्त होता है, उनसे रहित हुआ ही नहीं कभी। तो ऐसे होता हुआ कर्मों से बंधा हुआ होता हुआ क्या करता है, संसार में परिभ्रमण करता रहता है। तो उसके लिए वो कुंभकार का चाक उसकी उपमा दी, वहां भी निमित्त रूप से कुंभार है और वो चाक को घुमा रहा है,
कुंभार कर्म बना जीव
घूम रहा है जीव स्वयं। देखो आयु कर्म का आपका ऐसा प्रश्न है, क्या आयु कर्म किसी अन्य रूप से भी परिणत होते हैं, क्या वो आयु कर्म रूप से फल देते हैं? तो आयु कर्म हमेशा कोई भी एक प्रकृति दूसरे प्रकृति रूप कभी होती ही नहीं, कभी ज्ञानावरण का फल दर्शनावरण रूप से नहीं आएगा। आयु का जो है अभी आयु कर्म जो है उसका फल क्या है, वो उसका देह की स्थिति में, उन पुद्गलों की बात कर रहे हैं कि कर्म रूप, अभी समझो आयु कर्म है, ये उदय देख के खिर गए उसकी बात कर रहे हैं। तो कर्म है वो अकर्म रूप हो गए, अकर्म हुए वे, अभी वो लाइक ऑर्डिनरी पुद्गल है, उनका कुछ भी परिणमन हो सकता है, ये कारमाण वर्गणा है, वो कारमाण रूप से ही रहेगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है, वो बिखर कर परमाणु रूप से हो जाएगी, बिखर कर उसका जो परिणमन होता है ना अपने आप, तो उसके कारण वो आहार वर्गणा रूप से भी परिणत हो सकती है।
लेकिन उसके लिए एक बात जरूरी है कि अकर्म रूप हुई यानी कारमाण वर्गणा रूप हुई, कार्मान वर्गणा किसको कहते हैं, जो स्कंद को कहते हैं, तो उसमें से एक परमाणु अलग हो जाए या उसमें से बहुत सारे परमाणु जुदे हो जाए, तो वो एक परमाणु जो होएगा तो वो एक परमाणु मन कोई भी वर्गणा का पार्ट बन सकता है।
वापस भी वो कर्म हो सकते
हैं।
हाँ, ऐसी है ना, ये अलग अलग प्रकार की कार्माण वर्गणाएं हैं। विशिष्ट कार्माण वर्गणा ज्ञानावरण रूप से ही परिणत होगी, यानी वो ज्ञानावरण रूप होने वाली वर्गणा ही अलग है, दर्शनावरण रूप होने वाली उनमें वैसी योग्यता पड़ी उन पुद्गलों में फॉर द टाइमिंग। अभी बाद में वो अन्य अन्य रूप हो जाएगी, ख्याल है ना। जब तक वे कार्माण वर्गणा रूप है तब तक उनमें वैसी वैसी योग्यता पड़ी है। जैसे हम देखते ना उसके सभी जो गुणों के परिणाम है, स्पर्श रस गंध वर्ण, अभी हम कर्मों की बात नहीं करते, एक ही पुद्गल के वो स्पर्शादि जो गुण है वो अन्य अन्य रूप से परिणत हो जाते हैं। जैसे शक्कर है तब वो सफ़ेद है, मीठी है, और फिर उसको जला दो तो ब्राउन हो जाएगी, कड़वाहट उसमें आ जाएगी, धुआं होकर कुछ परमाणु उसमें से निकल जाएंगे। तो उसका ये जो परिणमन है, परमाणु तो वे ही है, अभी वो अन्य रूप से परिणत हो गए, ऐसा परिणमन उनमें भी होता है। शक्कर ये पर्याय है ना, परमाणु वहां भी थे और उस राख में भी है। जो परमाणु पहले शक्कर रूप थे उन परमाणु का अभी कड़वाहट उसकी, यानी जो रस की पर्याय बदल गई, गंध की बदल गई, वर्ण की बदल गई, ऐसे जिनमें ये गुण थे, ऐसे आयु रूप से जो फल देने का था, या क्रोध मान माया लोभ रूप से वो कोई फल लेने के ऐसे उठे तो वो चेंज हो गए।
तो ये तो मैं कह रहा आयु के परमाणु है वो फिर गए, और नेक्स्ट टर्म में कोई परमाणु शायद मेरे ग्रहण किए तो वो दूसरे कोई कर्म से अपेक्षा से भी वो ग्रहण हो सकता
है। अभी ऐसा है ना, हमने तो ये इसको उसमें देखा था कि कर्म द्रव्य परावर्तन में इसको देखा, हो सकते कि वही परमाणु हो या अन्य हो, वे अन्य अन्य रूप से होते जाते हैं, उनकी वैसी ही फिर से योग्यता होने के लिए बीच में बहुत काल भी जाएगा, क्योंकि जब वो कर्म से अकर्म हो जाते हैं तो विसरसोपचय रूप से हो जाते हैं, वो स्कंद रूप से बने वहीं पर बने रहे। ऐसा नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जीव को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाए, वहीं पर जीव के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह रूप से अन्य कर्मों के साथ चिपके हुए रहेंगे और फिर उनमें से फिर दोबारा कर्म बनेगा, ऐसा भी हो सकता है। अभी वो तो पुद्गल की अपनी योग्यता से उसका परिणमन होगा। हाँ, वो गृहित अगृहित मिश्र में हमने बात की थी उसकी। हाँ, हाँ, वे ही पुद्गल चाहिए, उतने ही संख्या में चाहिए, वैसे ही स्पर्श रस गंध वर्ण उसके सभी गुण वैसे ही चाहिए। हाँ, वो तो
यानी ये ग्रहित, एक मिनट, एक
पुद्गल भी वही चाहिए।
देखो देखो, हमने देखा है ग्रहित भी अनंत बार ग्रहण करता है, लेकिन उसमें जो क्वालिटी है या क्वांटिटी है उसमें भी फर्क पड़ता है, ख्याल में। यानी क्वालिटी इन द सेंस उसके जो स्पर्श रस गंध वर्ण और उसके जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसमें फर्क रहेगा तो कुछ काम के नहीं है, वो ग्रहित है, छोड़ दिया फिर वापस, ऐसा हमने देखा था ना कर्मों में।
देखो, एक तो समय में जो कर्म ग्रहण करते हैं तो उसकी निषेक रचना होकर पड़े रहेंगे अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों तक, उसमें से कुछ कुछ खिरते रहेंगे और कुछ कुछ रहे, अभी जो खिर गए वो अन्य अन्य रूप से परिणमित हो गए, वही पूरा का पूरा लॉट फिर से दोबारा एक साथ ग्रहण करना कितना मुश्किल है, ख्याल है ना। क्योंकि वे ही परमाणु चाहिए, वैसे ही होना तो बहुत आसान है, वे ही चाहिए, परमाणु भी वे ही चाहिए, अविभाग प्रतिच्छेद सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट सेम।
कर्मों की अपेक्षा आप लेंगे तो उसमें स्थिति अनुभाग ये सारा जो है सबके वैसे
सब
के वैसे चाहिए,
इसीलिए उसको अनंत काल कहा। अर्ध पुद्गल, उसका जो आधा काल है ना अर्ध पुद्गल परावर्तन, वो भी अनंत काल है। उसमें हमने देखा कि उसमें भी अनंत अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी चली जाती। अर्ध पुद्गल परावर्तन ये काल भी बहुत लंबा है, और ऐसा पूरा द्रव्य परिवर्तन अभी वो तो सबसे छोटा है, आगे आगे वाले सब उसके कितने गुना है, अनंत गुने। और ऐसे हम अनादि से करते आ गए, और ऐसे भी अनंत अनंत परिभ्रमण करिए, है ना, संसारों में भ्रमण करता रहता है। तो हमने तो इतनी आयु वाला मैं इतना मान रखा है, और उसके लिए सारे प्रयत्न हमारे, तो कहाँ कहाँ हम अपने सारा उपयोग खोते हैं। अब आगे पढ़ेंगे, मेधावी जीवों के अनुग्रहार्थ। पहले एक शब्द आया था ना, मंद मेधावी, ये मेधावी की बात है, ये आपकी बात है सब लोगों की। मेधावी जीवों के अनुग्रहार्थ, अनुग्रह करने ने उसके उनको उपकार करना या उसके लिए संग्रह नय का अवलंबन ले, यानी इकट्ठा करके संग्रह नय ने सभी भेदों का जिसमें हम अंतर्भूत करते हैं, प्रकृति समुत्कीर्तन करके, यानी ये जो मूल प्रकृतियों का कथन किया, प्रकृतियों के स्वरूप का कथन किया, ज्ञान आवरण दर्शन मोहिनी अंतराय वगैरह वगैरह, ये होशियार लोगों के लिए बताए। अब कहते हैं मंद बुद्धि जनों का अनुग्रह करने के लिए, आचार्यों को तो सबकी करुणा है, तो जिनको कुछ समझने में कठिनाई है ऐसे जीवों के लिए, व्यवहार नय रूप पर्याय से परिणत आचार्य, आचार्य उस रूप परिणत हुए हैं, व्यवहार नय रूप से परिणत आचार्य, क्योंकि व्यवहार नय तो ज्ञानियों को ही होगा, तो आचार्य उसका अवलंबन लेके शिष्यों को समझा रहे हैं। तो इसलिए कहा कि व्यवहार नय रूप परिणत पर्याय से परिणत आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं, यानी अगला सूत्र कहते हैं, यानी अब यहाँ इससे आगे सभी कर्मों की उत्तर प्रकृतियां इन्हें भेद बताएंगे। ये आसान है, ऐसा हमारे लिए कुछ बहुत कठिन विषय नहीं है। नानावरणीय से कम्मस पंच पयड़ियो, ज्ञानावरणीय कर्म की पांच उत्तर प्रकृतियां हैं, वे पांच प्रकृतियां इस प्रकार है, ऊपर पढ़ेंगे पहले हम सूत्र, नीचे का वो बोल्ड था, होना चाहिए था। आभिनिभोय नानावरणीयम, सुदनानावरणीयम, ओही नानावरणीयम, मनपज्जव नानावरणीयम, केवल नानावरणीयम चे इदि चेदि। उसका अर्थ वे पांच प्रकृतियां इस प्रकार है, आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय, हम दूसरी भाषा में मति ज्ञानावरणीय भी कह सकते हैं उसको, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मनःपर्याय ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय। ये बोल्ड में लिखना चाहिए था, सादी लेटर में लिखा है उन्होंने आगे। मूल ऐसा है ना, होशियार लोग मूल प्रकृतियों बताएंगे तो उनके ख्याल में आता है, अभी उसका भेद कर करके बताते हैं। इंदुबेन कहते ये तो आसान था, आठ प्रकृतियां ख्याल में रखना। इसीलिए वो पूछ रही है क्या ये मंद बुद्धियों के लिए। शंका, ज्ञानावरणीय कर्म की पांच प्रकृतियां होती है इस प्रकार का सूत्र नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पांचों प्रकृतियों के पृथक नाम निर्देश के द्वारा, यानी नामों के कथन के द्वारा, उसके द्वारा ही इस बात का ज्ञान हो जाता है कि ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृतियां पांच ही है। क्या कहते हैं, आपने पांच नाम बता दिए तो उसमें पांच हो गए, फिर अलग से क्यों बताते हैं कि ये ज्ञानावरणीय की पांच प्रकृतियां हैं। देखा ना, पहले एक सूत्र अलग बताया 13वें नंबर का कि ज्ञानावरणी की पांच प्रकृतियां हैं, फिर 14वें नंबर में बताया उसके नाम, तो डायरेक्ट नाम बताते तो भी हम ये पांच है ऐसे जान जाते। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नयावलंबी शिष्यों के अनुग्रह के लिए ज्ञानावरणीय कर्म की पांच प्रकृतियां होती है इस प्रकार का सूत्र निर्माण किया। ये पांच कहने से वो जान जाता है। यदि ये दोनों ही सूत्र एक नए के आश्रित होते तो उस उक्त प्रकार का यह दोष होता।
वो तो व्यवहार नहीं के आश्रित है दूसरा सूत्र, और पहला सूत्र द्रव्यार्थिक नहीं के आश्रित था,
किंतु पहला सूत्र द्रव्यार्थिक नई शिष्यों का अनुग्रह करने वाला है और पिछला सूत्र पर्यायार्थिक नई शिष्यों का अनुग्रह करने वाला है। इसलिए ये दोनों ही सूत्र सफल अर्थात सार्थक है। अभी उसमें से एक एक शब्द का अर्थ बता रहे, अभिनिबोधिक का अर्थ पहले बताएंगे। अभिमुख और नियमित अर्थ के अवबोध को, अवबोध यानी ज्ञान, पहले शब्द आया था ना अवबोध, अभिमुख और नियमित अर्थ के अवबोध को अभिनिबोध कहते हैं। स्थूल वर्तमान और अनंतरित अर्थात व्यवधान रहित यानी किसी बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, बाधा रहित अर्थों को अभिमुख कहते हैं। यहाँ जो लिखा है ना स्थूल वर्तमान और अनंतरित, इसके उल्टे शब्द कभी हमने सुने हैं? हाँ, सूक्ष्म, दूरवर्ती और अंतरित। किसका वर्णन था वो? हाँ, केवल ज्ञान का जब वर्णन आता है तो इन पदार्थों को वे जानते हैं, तो यह उसके उल्टा लेना। इंद्रिय ज्ञान की यहाँ अपेक्षा आती है, तो क्या स्थूल पदार्थ मोटे मोटे वे भी वर्तमान जो सामने है, और अनंतरित, अनंतरित यानी काल की अपेक्षा या डिस्टेंस वाइज यानी क्षेत्र की अपेक्षा जो अपने लिमिटेड यानी मर्यादा में हो। जैसे हम यहाँ बैठे बैठे पूना में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है कुछ देख नहीं सकते, वो हमारे लिए अंतरित है या दूरवर्ती है। अभी वर्तमान का तो जान रहे हैं, परंतु 4 साल बाद क्या होने वाला है उसकी बात नहीं जान रहे, ये कल क्या होने वाला है वो नहीं जान रहे, ऐसा कहते हैं, आपको नहीं मालूम। व्यवधान रहित अर्थों को अभिमुख कहते हैं, उन पदार्थों को अभिमुख कहा। चक्षुर इंद्रिय में रूप नियमित है, ये नियमित पदार्थों को लिखा ना, नियमित यानी निश्चित पदार्थों को ही जानता है। इंद्रिया कैसी है? स्पेशलाइज्ड है, आप नहीं मालूम, स्पेशलिस्ट आजकल होते ना डॉक्टर, हर एक का अपना अपना स्पेशलिस्ट होता है। वो दांत का भी स्पेशलिस्ट अलग, नाक का, आंख का, दांत में भी वो ऑर्थोडोंटिस्ट अलग है, वो रूट कैनल वाला अलग है स्पेशलिस्ट। वैसे इंद्रिया क्या है, अपने अपने विषय को जानती है, इसलिए उसको कहा नियमित अर्थों को जानने वाले। चक्षु इंद्रिया रूप को ही जानेगी, वो गंध को और रस को नहीं जानेगी। तो चक्षु इंद्रिय में रूप नियमित है, नियमित है यानी वही उसका विषय है। श्रोत्रेंद्रिय में शब्द, घ्राणेन्द्रिय में गंध, जिभेन्द्रिय में रस और स्पर्शेन्द्रिय में स्पर्श, और इनके अलावा नौ इंद्रिय, मन को नौ इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय कहते करण यानी इंद्रिय, अंत यानी अंदर वाला करण, अंतकरण यानी मन, ये अंतकरण शब्द ऐसे ही तैयार हुआ। तो ये नौ इंद्रिय यानी मन, उसमें दृष्ट है, हाँ ये दुष्ट नहीं है, दृष्ट यानी क्या, देखा हुआ, श्रुत यानी सुना हुआ, और अनुभव तो यानी अनुभव किया हुआ अनुभूत पदार्थ नियमित है। यानी मन के द्वारा जो हम विचार चलते हैं वो क्या क्या है, सुना हुआ, देखा हुआ और अनुभव किया हुआ, वे पदार्थ नियमित है, वे उसका विषय है। अभी उसके बारे में कल्पना के घोड़े दौड़ाता है वो बात अलग, सुनी देखी और उसकी चीजों के कुछ अलग अलग मन के द्वारा कॉम्बिनेशंस करते बैठते ना, इमेजिनेशंस। देखिए इस प्रकार के अभिमुख, अभिमुख का अर्थ क्या है ना, समझ में ना, अभिमुख यानी सन्मुख कहो, या जिसको कहा उन्होंने स्थूल, अनंतरित और वर्तमान, उसको अभिमुख कहा, और नियमित यानी अपना अपना विषय। इस तरह से अभिमुख और नियमित पदार्थों में जो बोध होता है, पदार्थों में होता है ना, पदार्थों के संबंध में
जो हमें बोध होता है, हमें ज्ञान होता है, वह अभिनिबोध है। वो भो नहीं, बो चाहिए, अभिनिबोध है। अभिनिबोध का अर्थ क्या है? अभिमुख और नियमित पदार्थों का ज्ञान होना, उस ज्ञान को अभिनिबोध कहेंगे। बोध यानी ज्ञान, अभिनिबोध ही अभिनिबोधिक ज्ञान कहलाता है। जैसे उदय शब्द से औदयिक शब्द तैयार हुआ है ना, शरीर से शारीरिक, मन से मानसिक, वैसे अभिनिबोध शब्द से अभिनिबोधिक ऐसा शब्द तैयार हुआ। यहां पर ज्ञान यह विशेष्य पद है, क्योंकि वह सामान्य रूप है। क्या कहते हैं, देखो ना, काली गाय ऐसा अगर हमने कहा तो गाय का विशेषण है काली। गाय कैसी है? काली है, तो काली विशेषण हुआ किसका? गाय का। तो गाय को कहते हैं विशेष्य और काली को कहेंगे विशेषण। वैसे यहाँ ज्ञान है विशेष्य और वो अभिनिबोधिक वो है उसका विशेषण। देखो फिर से, यहाँ पर ज्ञान यह विशेष्य पद है। पद यानी शब्द है, क्योंकि वह सामान्य रूप है। क्योंकि सब जगह ज्ञान ज्ञान ज्ञान, अभिनिबोधिक ज्ञान, फिर श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, तो ज्ञान 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 तो सामान्य है। उसके पहले ये अलग अलग पांच अलग शब्द लिखते तो वो उसका विशेषण हो गया। ज्ञान कैसा है? तो मति ज्ञान है या श्रुत ज्ञान है या अवधि ज्ञान है, हमको पता चलता है। तो ये ज्ञान तो है सामान्य रूप से, और अभिनिबोधिक यह विशेषण पद है, वो उसका विशेषण है ज्ञान का, क्योंकि यह अन्य ज्ञानों से व्यवच्छेद करता है, यानी जुदा करके बताता है। पांचों प्रकार के ज्ञानों में यह अभिनिबोधिक ज्ञान है। अभिनिबोधिक कहने से यह श्रुत ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है, मनोपर्य ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, अन्य ज्ञानों से इसको अलग करता है, उसका जो भेद बताता है। इसलिए दोनों पदों के देने पर भी पुनरुक्त दोष नहीं आता। क्या कहते हैं? अभिनिबोध में बोध ये ज्ञान है, बोध यानी ज्ञान, और अभिनिबोधिक कहने से भी वो ज्ञान को ही बताने वाला है, फिर भी अभिनिबोधिक कह के फिर भी ज्ञान कह दिया, ऐसा क्यों? तो ये ज्ञान तो वहाँ सामान्य को बताता है और ये उसका विशेषण हो गया, इसलिए वो ज्ञान के अर्थ में शब्द रिपीट हुआ तो भी वहाँ वो दोष नहीं आता, क्योंकि अभिनिबोधिक कहने से वो अन्य ज्ञानों से अलग है ये बताता है, और ज्ञान तो सामान्य रूप से सब जगह है इसलिए वहाँ रखा है। वह अभिनिबोधिक ज्ञान, ये अ हुआ है उसको आ करना, अभिनिबोधिक ज्ञान यानी अपनी हमेशा की भाषा में मति ज्ञान कैसा है? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा के भेद से चार प्रकार का है। ये चार उसके मुख्य भेद हो गए, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। विषय और विषयी के, विषय किसको कहते हैं? जिसको जानना है, ज्ञेय को विषय कहते हैं, और विषयी यानी जिसने विषय बनाया, ऐसे ज्ञान को विषयी कहते हैं। तो विषय और विषयी, विषय ने ऑब्जेक्ट ऑफ ज्ञान अपना नॉलेज, और जो जानने वाला है वो ज्ञान उसका विषय हो गया। तो विषय और विषयी के यानी उन दोनों का योग्य देश में प्राप्त होने के अनंतर, यानी जो पदार्थ जानने में आ रहे हैं ज्ञेय और जानने वाला ज्ञान, इनका योग्य देश में आने पर यानी क्या, उनकी उनकी मर्यादे में रहने पर, विद इन द रेंज, बरोबर है। जैसे हम यहाँ बैठे बैठे वो फोर्ट में क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं, ये अपनी मर्यादा के बाहर वाली है, इतनी इंद्रियों की कैपेसिटी नहीं है कि वहाँ का देख सके। तो कहते हैं योग्य देश में प्राप्त होने पर, जैसे अक्षर तो हम पढ़ सकते हैं परंतु अभी अश्विन भाई की पुस्तक में यहाँ बैठे बैठे नहीं पढ़ सकते, तो ये मेरे इतनी दूरी पर होनी चाहिए तो मैं इसके ठीक तरह से देख सकती हूँ।
ये हुआ अपने देश में आने पर। उसके अनंतर यानी जब उनका ऐसा विशिष्ट वो क्षेत्र में आने पर, उसके अनंतर यानी उसके पश्चात ये आने पर आद्य ग्रहण को अवग्रह कहते हैं। आद्य ने सबसे पहले जो वहाँ ज्ञान हुआ उसको कहते हैं अवग्रह। ग्रहण का अर्थ है ज्ञान, जानना। ग्रहण शब्द तो दर्शन और ज्ञान दोनों के लिए आता है, यहाँ दर्शन की बात नहीं हो रही है। इसके पहले तो दर्शन होकर ही ज्ञान होगा, यहाँ ज्ञान में से कौन सा पहले होता है उसकी बात चल रही है। तो आद्य ग्रहण को अवग्रह कहा। बाहरी पदार्थ विषय है और इंद्रियां विषयी कहलाती है। ये इंद्रिय ज्ञान संबंध में ये मति ज्ञान की बात चल रही है। तो बाह्य विषयों को विषय कहा और ये जो मति ज्ञान है उसको विषयी कहा। इंद्रियां, इंद्रिय ज्ञान है ना, यहाँ इंद्रियों को यहाँ विषयी कहा। इन दोनों की ज्ञान उत्पन्न करने के योग्य अवस्था का नाम संपात है। यानी इन दोनों की ऐसी अवस्था बने कि उस समय ज्ञान उत्पन्न हो, तब उसको कहते हैं उनका संपात हुआ। या उस दूसरा एक शब्द है उसमें सन्निपात में, यानी निकट आ गए ऐसा भी कहेंगे, सामीप्य। हाँ, तो यहाँ उसको संपात कहा। विषय यानी उनका नजदीक आना, यथा योग्य अंतर में आ जाना। विषय और विषयी यानी अभी जो इंद्रियां हैं उनकी जो रेंज है और उनके अपने अपने विषय हैं, तो उस रेंज में वे विषय आते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सिर के पीछे मेरे 6 इंच पर एक वस्तु है, परंतु इतनी नजदीक होने पर भी वो चक्षु इंद्रियों के द्वारा उसका ग्रहण नहीं हो रहा है, परंतु सामने वाली 12 फुट दूर की भी चीज में देख रही हूँ या अन्य और भी दूरी, तो इसलिए उसको कहते विषय और विषयी का ये योग्य जो उसका जो है संपात, योग्य अवस्था वो संपात है। तो जब उनका संपात होता है, विषय और विषयी का संपात होने के अनंतर, संपात के अनंतर उत्पन्न होने वाला ज्ञान अवग्रह कहलाता है। यानी किसी इंद्रिय का जो विषय है उसकी रेंज में आता है तब उनका ज्ञान होता है, उसको कहते हैं अवग्रह। अभी शब्द भी सुनाई देते हैं, परंतु वो ऐसा नहीं है कि हाँ इतनी दूरी से हो गया तो ही सुनाई देंगे, उसमें भी रेंज होती है ना। जैसे हम साइंस में कहते उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, क्योंकि हमारी जो सुनने की शक्ति है विशिष्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर और विशिष्ट फ्रीक्वेंसी के नीचे जो रेंज होगी बीच वाली उसको ही हम सुन पाते हैं ना। अत्यंत मंद फ्रीक्वेंसी वाले कभी वो सुनाई देते हैं, और एकदम जो श्रिल होते हैं वॉइसेस उसकी फ्रीक्वेंसी वो भी हमें सुनाई नहीं देते। तो ये उसकी रेंज है, तो ये लिमिट है उसकी, उसको संपात कहेंगे। वह अवग्रह भी दो प्रकार का है। यहाँ जो ये सबसे पहले होने वाला जो मति ज्ञान है, अभी हम आभिनिबोधिक को मति ज्ञान कहेंगे, तो वो मति ज्ञान भी दो प्रकार का है। एक है अर्थावग्रह और एक है व्यंजनावग्रह। ये हमने मति ज्ञान के भेद पहली पुस्तक में भी बहुत विस्तार से देखे थे, अब दोबारा देखेंगे, थोड़ा अपने रिवीजन हो जाएंगे। उनमें अप्राप्त अर्थात अस्पृष्ट अर्थ के ग्रहण करने को अर्थावग्रह कहते हैं। जैसे चक्षुर इंद्रिय के द्वारा रूप को ग्रहण करना, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा रूप का ग्रहण होता है या मन संबंधी जो जानना होता है वो डायरेक्ट इमीडिएट होता है। ऐसा नहीं होता कि देख लिया, कभी दिखा कभी नहीं दिखा, ऐसी नहीं बात। परंतु स्पर्शन इंद्रिय संबंधी कोई मच्छर आके काट भी लेता है और कभी कभी थोड़ी देर तक हमें पता ही नहीं चलता है। या ऐसे भी होता है ना रसोई में उबलते तेल का ऐसा कोई छिटका उड़कर हाथ में आ गया, देख रहे कि वहाँ जल गया और फिर भी थोड़ी देर के बाद वहाँ स्पर्श संबंधी, देखने में तो डायरेक्ट देखते हैं, उसी समय पता चला कि अरे ये यहाँ उड़ गया, परंतु वहाँ जलन शुरू होती है 1-2-10-15 सेकंड के बाद। तो वहाँ उसके स्टार्टिंग में जो उस संबंधी का ग्रहण में यानी वहाँ ज्ञान तो वैसा है परंतु वो अस्पष्ट जो है, उसको वो व्यंजन अग्रह कहेंगे। तो चक्षु और मन के संबंध में ये उसमें पहले व्यंजनावग्रह हुआ और बाद में अर्थावग्रह हुआ, ऐसा चक्षु इंद्रिय के द्वारा डायरेक्ट अर्थावग्रह होता है। देखो चक्षु इंद्रिय द्वारा और मन के द्वारा जो जानना होता है उसमें वो बीच में व्यंजनावग्रह नहीं आता, अर्थावग्रह ने अवग्रह या अवाय धारणा डायरेक्ट हो जाता है। चक्षु को छोड़कर और मन को छोड़कर अन्य जो चार इंद्रिय स्पर्शन है, घ्राण है, रस है वगैरह, तो उसके संबंध में क्या होता है, पहले व्यंजनावग्रह होगा, फिर अर्थावग्रह होगा, फिर यह अवाय धारणा होगी। क्या देखो यहाँ क्या कहते हैं, देखो चक्षु इंद्रिय के स्पीड यानी बीच में उसको कुछ वो व्यंजना वगैरह यानी जो अव्यक्त ज्ञान वाला जो है वहाँ वो नहीं है, डायरेक्ट व्यक्त ही हो जाता है उसका, यानी हमने ये देखा तो ये हो गया। परंतु तो स्पर्श संबंध में पहला कुछ है ऐसा अव्यक्त रूप से चलता है वहाँ, किसमें देखो अवग्रह में मन और चक्षु के द्वारा डायरेक्ट अर्थावग्रह होता है, अन्य इंद्रियों को भी अर्थावग्रह है परंतु उसके पहले व्यंजनावग्रह भी होता है उनके, यानी उन हाँ उसको ज्ञान तो कहेंगे हम, पर जो हम जिसे ना हम बुद्धि में आना वगैरह वगैरह, जैसे कोरा मटका लाया हमने उस पर पानी डालते गए तो क्या वो गीला हुआ कि नहीं हुआ, उसने तो पानी तो सोख लिया है परंतु हमें नहीं दिख रहा है ना, वो गीला दिखे तब तक उसमें बहुत सारा पानी चला गया। वैसे स्पर्शन संबंधी जो ज्ञान तो हो रहा है उसको अज्ञान यानी ज्ञान नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो मति ज्ञान का भेद है ना, व्यंजनावग्रह भी आद्य ग्रहण है, वो वहाँ भी ग्रहण चल रहा है, ये वो ऐसी डेफिनेशन उनकी। अस्पृष्ट अर्थ के ग्रहण करने को अर्थावग्रह कहते हैं, जैसे चक्षु इंद्रिय का नहीं नहीं आभास विभास कुछ नहीं होता। हाँ, हाँ। दर्शन तो दर्शन है, दर्शनोपयोग के बाद अर्थावग्रह होगा या व्यंजनावग्रह जो कुछ है वो उसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट ही होता है पहले दर्शन और फिर चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान। परंतु स्पर्शन इंद्रिय में क्या होगा, दर्शन होगा, फिर वो व्यंजनावग्रह होगा और फिर अर्थावग्रह होगा। ये डेफिनेशन ऐसी अटपटी है ना, अप्राप्त और अस्पृष्ट अर्थ, हमें ऐसा लगता कि ये व्यंजनावग्रह की डेफिनेशन होगी। इसकी ज्यादा चर्चा उन्होंने पहले भाग में भी की थी या अपने मोक्ष शास्त्र में भी हमने बहुत विस्तार से बहुत अच्छी चर्चा है इसकी। अस्पृष्ट अर्थ है ये जो विषय है वो इंद्रियों के साथ कांटेक्ट में यानी उसके हाँ क्लोज कांटेक्ट में नहीं है,
स्पर्श है, ऐसे थाली में रखा हुआ स्पर्श नहीं है, रसना जब तक जीव को कांटेक्ट नहीं होता है, देखो तो जिसे तो जो हम लोग जो गंध को
गंध भी जब तक परमाणु आके वहाँ एकदम चिपकते नहीं है, हमें दिखते नहीं है, फिर भी वो परमाणु आकर वहाँ तक आएंगे तभी हमको गंध का ज्ञान होगा। आवाज में भी शब्द भी जब वो शब्द आके टकराते हैं कान पर तब उस संबंधी ज्ञान होता है, सब में ऐसे ही समझना।
एक दफा मैंने तो इतिहास के रूप में नहीं कहता, एक दफा आपने ये भी बताया कि स्पर्श यहाँ हो गया तो उसके बाद से भी पता लगा,
वही तो मैं बता रही हूँ, उसी को अव्यक्त स्टार्टिंग में जो हुआ ना वो व्यंजनावग्रह हुआ, उसी में तो ये है, वो स्पृष्ट अर्थ है, स्पृष्ट पदार्थों में पहले वो स्पर्श तो उसने कर दिया, कांटेक्ट आ गया, अभी गर्म चीज
जो जो सर बता रहे थे तो उनका ऐसा कहना था कि वो तो क्या है कि ये बिना कॉन्टेक्ट वाला है इसलिए वो फास्ट होता है।
फास्ट की बात नहीं,
की बात नहीं है, लेकिन उनको जो बीच में व्यंजन होना होता है वो व्यंजन होने
वो और मैं एक ही बात बता रही हूँ। वे तो चक्षु संबंधी बता रहे हैं कि वहाँ कोई स्पर्श होना नहीं होता है, वो दूर है पदार्थ। अभी वो सामने वहाँ स्टैंड रखा है, वो दूर है, फिर भी वो तो डायरेक्ट जान ही लेता है। उसके बीच में ये अव्यक्त रूप जो है दशा, वो नहीं होती किस में, अस्पृष्ट अर्थों में, यानी जो पदार्थ जो कॉन्टेक्ट में नहीं आ, कॉन्टेक्ट में आकर ज्ञान होना, ये किस में होता है, स्पर्शन इंद्रिय में होता है, ग्रहण इंद्रिय में, हाँ, रसने इंद्रिय में और कर्ण इंद्रिय में होता है। हाँ, चक्षु उसके लिए वो स्पर्श होना की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई स्पर्श आंखों में स्पर्श करेगा तो दिखेगा ही नहीं हमको क्योंकि ये आगे वाली ये कॉन्टेक्ट में आती उसको तो नहीं हम देख रहे। हाँ, जो क्लोज कॉन्टेक्ट में नहीं है, जो क्लोज कॉन्टेक्ट में नहीं है इंद्रियों के, जो पदार्थ कॉन्टेक्ट में आने के बाद जानना होता है वो अन्य इंद्रियों के द्वारा, परंतु आंखों के लिए वो पदार्थों के साथ चिपकना या उसके क्लोज कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं होती है।
देखो, आपने समय सार में 14-15 नंबर की गाथा देखी थी, वहां पर भी कहा गया था कि अबद्ध और अस्पृष्ट
नहीं स्पर्श।
हाँ, यानी आत्मा कैसा है तो बद्धा हुआ नहीं है, बंधा हुआ नहीं है और स्पर्शा हुआ नहीं है, ऐसा वो अबद्ध अस्पृष्ट। वहाँ का जो अस्पृष्ट शब्द है वो यहाँ लेना, यानी स्पर्शा एला नहीं है, स्पृष्ट का अर्थ स्पर्श हो, स्पर्शित होना, कॉन्टेक्ट होना, और आत्मा
बिना
कैसा
कॉन्टेक्ट के जानता है।
हाँ,
कौन, चक्षु इंद्रिय और मन। मन के लिए तो कोई किसी सामने नहीं होगा तो भी सब उसको जानना चलता है इमेजिनेशन के द्वारा, तो उसके लिए बीच में वो व्यंजनावग्रह नहीं है। जहाँ वो क्लोज कॉन्टेक्ट में आता है, अभी स्पर्श कैसा कि वो क्लोज कॉन्टेक्ट बताना है, एकदम जो समीपता होती है ना उस इंद्रिय की और उस परमाणुओं की समीपता होगी तब वहाँ का वो ज्ञान होगा। रसना के बारे में है, ग्रहण के बारे में, स्पर्श के बारे में, उसको कहेंगे स्पृष्ट अर्थ, यानी स्पर्शा हुआ पदार्थ। अस्पृष्ट अर्थ है ना, बिना स्पर्शा हुए, यानी दूर है वो अभी। ये स्पर्शन संबंधी ज्ञान उसकी बात नहीं चल रही।
हाँ,
देखो, मन और चक्षु संबंधी सबसे पहले अर्थावग्रह होता है। स्पर्श रस घ्राण और कर्ण इनके जो उन संबंधी उन इंद्रियों का जो ज्ञान है वहाँ पहले व्यंजनावग्रह होगा, फिर अर्थावग्रह होगा।
इसका मतलब ये चक्षु और मन में सिर्फ अर्थावग्रह होता है।
हाँ, बिल्कुल। हाँ,
और इनमें दोनों होते हैं।
हाँ, जैसे छह जो है ना, पांच इंद्रिय और मन, इनके द्वारा पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसको हम मति ज्ञान कहेंगे, आभिनिबोधिक ज्ञान। उसमें से छह होगी ना, अभी पांच इंद्रिय और एक मन, तो उसमें से चार के संबंध में पहले व्यंजनावग्रह होगा, फिर अर्थावग्रह होगा, फिर यहाँ अवाय धारणा होगी। और चक्षु और मन के संबंध में अर्थावग्रह, यहाँ अवाय धारणा, बराबर। हाँ, ये उसके भेद आगे होंगे, अब हर एक के बारह बारह भेद करेंगे हम। हाँ, 336 भेद हो जाएंगे। ये अभी हमने चक्षु और मन के संबंध है, अर्थावग्रह, इहा, अवाय और धारणा, यानी चार चार हो गए। और अन्य जो चार है यानी बार चौक, हाँ, 48 हो जाएंगे उसके बाद, ये उसके हम बाद में हिसाब करेंगे। यानी चक्षु संबंधी 48 और मन संबंधी 48 हो जाएंगे। ये 12 कौन से, वो उसकी बात आने वाली है अभी। अन्य जो चार इंद्रिया है उस हरेक इंद्रिय के बारे में पहले व्यंजनावग्रह, फिर अर्थावग्रह, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा, हरेक के पांच पांच ऐसे चार इंद्रिया और उसके बारह बारह वो तो 336 हो जाएगी टोटल।
ये 12 12 पारा 5 60 हो गए ना, 5 हमने हुए व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह इहा अवाय धारणा, ये 5 और हर एक के 12 12 संबंधी, उसके संबंधी 12 यानी 60 60 हो गए। तो 60 60 ऐसे 4 के संबंध में हो गए, 240 ही हो गया। हाँ, और वो 96 हुए थे, 48 और 48 336 भेद हो जाएंगे। वो तो आएगी बात अगले पेज, 2 पेज के बाद आने वाली बात। तो ये बात अच्छी बताई आपने, वो स्पृष्ट और अस्पृष्ट का, क्योंकि डेफिनेशन के बाद हमें ऐसा लगता है कुछ अटप कंफ्यूजिंग है। अर्थ यानी पदार्थ, स्पृष्ट अर्थ यानी जो कॉन्टेक्ट में आया हुआ पदार्थ, और मन और इंद्रिया चक्षु इंद्रिय किसको जानी है, जो कॉन्टेक्ट में आए उसको पदार्थ हो नहीं, वो अस्पृष्ट अर्थ को जानने वाली है। इसलिए उनमें डायरेक्ट अर्थावग्रह होता है, बीच में वो व्यंजनावग्रह नहीं होता है। देखो यहाँ नीचे से दूसरी, जैसे चक्षु इंद्रिय के द्वारा रूप को ग्रहण करना, प्राप्त अर्थात स्पृष्ट अर्थ के ग्रहण को व्यंजनावग्रह कहते हैं। ये हो ना, पहले हमने अस्पृष्ट अर्थ के ग्रहण को अर्थावग्रह कहते क्या, अभी स्पृष्ट अर्थ के ग्रहण को व्यंजनावग्रह कहते हैं। जैसे स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा स्पर्श को ग्रहण करना यानी जानना, अब ये तो अवग्रह की बात हो गई। अब अवग्रह से ग्रहण किए गए अर्थ के यानी जो अवग्रह ज्ञान हुआ है, जिस विषय के संबंध में ज्ञान हुआ है, उस विषय के बारे में विशेष जानने की आकांक्षा इहा है, जिज्ञासा है ना, तो उसको कहेंगे वहां इहा। अर्थात अवग्रह के द्वारा जो पदार्थ ग्रहण किया गया है उसकी विशेष जिज्ञासा को इहा कहते हैं, यानी वहां ऐसा विशेष जानने का जो प्रयत्न है वहां उसको इहा कहेंगे। जैसे किसी पुरुष को देखकर क्या यह भव्य है अथवा क्या यह अभव्य है, इस प्रकार की विशेष परीक्षा करने को इहा ज्ञान कहते हैं। जैसे वो शास्त्र में आता है ना कि कुछ सफेद जा रहा था, यानी आकाश में कुछ सफेद दिखा, तो क्या पक्षी है, क्या यह ध्वजा है, तो उस जानने के प्रति अधिक हम उद्युक्त तो हो गए, तो उसको इहा ज्ञान कहते। तो विशेष परीक्षा करने को यह ज्ञान कहते हैं, यानी अवग्रह से हाँ उसको निश्चित करना, यानी निर्णय के प्रति अधिक पहुंचना। तो कोई कहेगे तो यह है कि वो है, तो आप तो कंफ्यूजन में हो, तो इसको संदेह कहो, तो ये संदेह नहीं, संदेह को मिटाने वाला है। तो यह ज्ञान संदेह रूप नहीं है, उनको लिखना पड़ा, क्योंकि पूछे ना कोई, क्योंकि संशय ज्ञान हमको किसको कहते, अरे ये चांदी है कि सीप है, तो उसको हमने संशय कहा था, और यहाँ भी आप यही बात कह रहे हैं, सर ये ध्वजा है कि बगुले की पंक्ति क्या है, तो ऐसी जिज्ञासा पूर्वक वो अधिक जानने के लिए उसको निश्चित करने के प्रति जा रहा है, निर्णय के प्रति पहुंच रहा है, इसलिए ये संशय ज्ञान नहीं है, संदेह वाला नहीं है। तो इहा ज्ञान संदेह रूप नहीं है, क्योंकि इहात्मक विचार बुद्धि से संदेह का विनाश पाया जाता है, संदेह को तो मिटाया जाता है, इसको इहा कहते हैं। संदेह से उपरितन यानी संदेह के पार, यानी जिसने संदेह को मिटा दिया है, उपरितन है उस ओर, और अवाय ज्ञान से अधस्तन, अवाय यानी बिल्कुल वो ऊपर का जो यानी जहां निर्णय हो गया है, निर्णयात्मक, तो अवाय के पहले का और संदेह के बाद का, यानी इन दोनों के बीच वाला है, पहले जिज्ञासा हुई ना इसको, अरे निश्चित करूं, तो उसके पश्चात वाला, और जहां निर्णय होगा उसके पहले वाला, ये बीच की जो अवस्था है उसको यहाँ कहते हैं। तो संदेह से उपरितन और अवाय ज्ञान से अधस्तन, यानी संदेह को उसने पार किया है और अभी निर्णय तक नहीं पहुंचा है, तथा अंतराल में प्रवृत्त होने वाली विचार बुद्धि का नाम इहा है, ये बीच वाली जो बुद्धि है वहाँ का जो ज्ञान है उसका नाम है इहा ज्ञान। होने के पहले पहले, हाँ निर्णय के प्रति जा रहा है, संदेह का विनाश हुआ है, अभी ये बीच वाली स्टेज बताई उन्होंने।
देखिए निर्णय हो गया तो आवाय ज्ञान होगा, तो आवाय होने के पहले और संदेह होने के बाद वाला जो बीच वाला है,
संदेह को दूर करने के प्रति जो उसके विचार चल रहे, विचार यानी वहाँ बुद्धि ज्ञानात्मक लेना उसको।
संदेह और निर्णय के बीच वाला,
अभी शंकाकार छोड़ने वाला नहीं है। देखो विशेष रूप से तर्क करना श्रुत ज्ञान है। आप आश्विन मेरे को भी यही प्रश्न है। आचार्यों को पता है आचुर भाई के प्रश्न क्या होने वाला है। तो पहले हाँ अच्छा है, नहीं थोड़ी गहराई से बात आती है। ऐसा है ना, हम अलग अलग शास्त्र पढ़ते हैं तो अपनी गहराई बढ़ती जाती है जरा कैच करने की। देखो क्या कहते हैं शंकाकार ने क्या पूछा, जहाँ विशेष विचार होता है, तर्क लगाया जाता है, उसको तो श्रुत ज्ञान कहते हैं। इस शास्त्र वचन के अनुसार, वो भी ऐसी वैसी शंका नहीं है, शास्त्र का ही वचन सामने रख रहा है कि विशेष तर्क को तो श्रुत ज्ञान कहते हैं। उसके अनुसार इहा वितर्क रूप होने से श्रुत ज्ञान है, तो अब इसको श्रुत ज्ञान कहो मति ज्ञान मत कहो। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि अवग्रह से प्रतिगृहित अर्थ के, प्रतिगृहित यानी जाना हुआ, अवग्रह से जाने हुए पदार्थ के आलंबन करने वाले वितर्क को इहा कहते हैं। इहा वितर्क है, विचारात्मक तो है, परंतु किस पदार्थ के बारे में, जो पदार्थ हम जान रहे उसी के बारे में। जैसे हमने आवाज सुनी, फिर भी हम जरा कान देकर सुनते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, अरे जरा स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा और हम चौकन्ना होकर सुनने लगते, उत्सुकता होती है वहाँ कि ये क्या कह रहे, जरा सब निर्णय तो करे, वो यहाँ वाली होगी, परंतु किस संबंध में, उसी शब्द के बारे में। और श्रुत ज्ञान में क्या हुआ, ऐसा नहीं शब्द सुना, जैसे हमने सुना शक्कर, और हम वो डब्बे वाली शक्कर के बारे में जान रहे हैं, उसके बारे में अपने विचार चल रहे हैं, जाना तो शब्द और हम विचार कर रहे, वितर्क कर रहे अन्य पदार्थ के बारे में। ये श्रुत ज्ञान की मूलभूत डेफिनेशन है, एक पदार्थ को जानते हैं और उस संबंधी दूसरे पदार्थ का ज्ञान हो रहा है। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के बारे में जो अन्य वितर्क चलेगा अपने अन्य पदार्थ के बारे में, मति ज्ञान से जाना हमने शब्द को कान के द्वारा, या लिखा हुआ यहाँ लिखा था शक्कर, हमने क्या पढ़ा, हमने तो काला अक्षर पढ़ा शक्कर, या सुना हमने क्या सुना, शब्द सुना, ये हमारा मति ज्ञान का विषय तो शब्द है, परंतु श्रुत ज्ञान ने विषय किसको बनाया, वो शक्कर जो खाने वाली है उसको। उसी पदार्थ का इसलिए इसको यह कहा, भले दोनों में वितर्क है, दोनों में विशेष विचार पूर्वक वहां बुद्धि लगी है जानने में, फिर भी वहां तो अन्य पदार्थ के बारे में, और मति ज्ञान में उसी पदार्थ के बारे में। मति ज्ञान यानी इंद्रियों के जो विषय है उसके बारे में जान रहे हैं, वो मति ज्ञान।
देखो मैं बोलता हूँ, अभी आपने शक्कर ऐसा सुना तो ये उंगली, और वो जो शक्कर डब्बे में रखी है वो दूसरी उंगली। अभी आप जब शक्कर सुनते हैं और ये एक उंगली के बारे में ही सोच रहे हैं, तो वो इहा ज्ञान हो गया। उसके ऊपर से आप ये डब्बे वाले शक्कर की बात करते हैं, तो वो श्रुत ज्ञान हो गया।
नहीं नहीं, वो श्रुत ज्ञान हुआ, वो अन्य पदार्थ हुआ ना, शक्कर ये शब्द एक, वो कर्णेन्द्रिय का विषय, कर्णेन्द्रिय का, और उसके बाद ये विचारधारा चली वो शक्कर के बारे में।
अभी देखिए ना,
जैसे आपने शक्कर सुना, मगर वो श है के स है, या शुगर कहा के शुकर के शुकर कहा के माइन्यूट नहीं, ये तो मेन डिफरेंस है भाई. देखो यहाँ लिखेंगे वो समाधान है ना, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि अवग्रह से प्रतिगृहित अर्थ के यानी जो मति ज्ञान के द्वारा अवग्रह जिसका हुआ था उसी अर्थ वही पदार्थ है उसी के आलंबन करने वाले वितर्क को यह कहते हैं, और भिन्न अर्थ का अवलंबन करने वाला यानी अन्य पदार्थ मति ज्ञान के द्वारा जिस पदार्थ को जाना उसके बाद हमने विचारधारा अन्य पदार्थ हमने जाना तो शब्द को और विचारधारा चल रही है वो शब्द ने जिसको बताया था इसे शक्कर को वो शुत गया. तो भिन्न अर्थ का आलंबन करने वाला वितर्क श्रुत ज्ञान, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है उसी बहुत बढ़िया है कि उसी अर्थ के संबंध में अर्थ यानी पदार्थ विषय उसी विषय को अधिक हम क्लैरिटी के लिए या जिज्ञासा पूर्वक जानते हैं उसके अपने विचार चलते हैं उसका वितर्क चलता है वो तो यह ज्ञान हुआ, और जाने हुए पदार्थ के अवलंबन से किसी अन्य चीज के हम अभी उसके बारे में अपना विचारधारा चल रही वो तो श्रुत ज्ञान होगा, ऐसा अर्थ स्वीकार किया गया है. अब उसके आगे अवाय की बात करेंगे. अब यहाँ ज्ञान से जाने गए पदार्थ विषयक संदेह को संदेह का दूर हो जाना अवाय है. हमने पहले देखा था ना यहाँ किसको संदेह के तो पार है वो यानी अभी निर्णय के प्रति चल रहा है, तो जब संदेह पूरा मिट गया है निश्चित हो गया कौन सा पदार्थ वो अवाय कहलाएगा. तो उसके लिए पहले में पहले क्या कंडीशन डाली, इहा ज्ञान से जाने गए पदार्थ विषयक संदेह का दूर हो जाना. उस पदार्थ के बारे में जो संदेह है वो मिट गया, संदेह मिट गया ने उसका पक्का सही ज्ञान हो गया तो हम कहेंगे उसको अवाय. इहा किसको कहा था, इहा के डेफिनेशन में कहा था अवग्रह से जाने हुए पदार्थ में, और अवाय के बारे में कहा इहा ज्ञान से जाने हुए पदार्थ में. इसका अर्थ होता है किसी को डायरेक्ट यहा हो जाए किसी को डायरेक्ट अवाय हो जाए ऐसा नहीं है, उसी क्रम से होगा अवग्रह फिर यहा फिर अवाय. अभी इतना फास्ट होता है कि हम तो लगता है हमने वो देखते ही सुनते ही उसका निर्णय कर लिया, उसके बीच में ये सारा प्रोसेस चलता है. हाँ दर्शन उसके पहले होगा. अब है पहले यहाँ ज्ञान से क्या यह भव्य है अथवा अभव्य है, इस प्रकार जो संदेह रूप बुद्धि के द्वारा विषय किया गया जीव है उसका विषय कौन है, सामने वाला जीव. यहाँ ज्ञान ने सामने वाले जीव के बारे में यह भव्य है क्या अभव्य है ऐसा वहाँ वो उसकी परीक्षा कर रहा था, वो जीव है सो यह अभव्य नहीं है भव्य ही है. अभी उसने निश्चित किया ना भव्य ही है, अभी उसके कुछ जो बातें हैं उसके कारण उसने निश्चित किया तो यह उसका अवाय ज्ञान हो गया, ही लगाए ना उसमें.
हाँ
किसके ये सामने जीव के बारे में उसका चल रहा है. अभी वो कहेंगे ये भव्य जीव तो अभव्य जीव तो कम है उनसे, तो वो भव्य जीव तो अनंत अनंत है, कितने ही भव्य जीव निगोद में पड़े, ये अन्य अन्य जो बातें चलेगी ना शास्त्र की संबंध में, ये तो सामने वाले जीव भव्य है कि अभव्य है ये निर्णय करना ये उसका मति ज्ञान चल रहा है. हाँ जो जाने हुए पदार्थ के बारे में उसके सही निर्णय तक पहुँचना वहाँ उसको प्रश्न उठा ना अरे ये भव्य है कि अभव्य है, तो उसके बारे में उसने उसी की परीक्षा करके निर्णय किया. नहीं नहीं श्रुत पहले मति ज्ञान होगा फिर ही उसका श्रुत ज्ञान होगा. मति ज्ञान के तो अभी ये तो अवाय तक तो हो गई, जरूरी नहीं कि वो धारणा तक पहुंचना चाहिए, वो धारणा की बात तो हम अभी कल देखेंगे, अभी 10 बज चुके. हाँ कल नहीं है, हाँ आपने याद दिलाया, चलो परसों.
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो।